نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے ضرورت شیخ. ہم اہل طریقت اہل محبت بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت, خصوصاً آخرت کی سرخروئی کے لیے ان کے دامن سے منسلک ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کیوں ضروری ہے, کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں, اس سے رہنمائی حاصل کریں. آج کل یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مرید نہیں ہیں, یعنی کسی کے ہاتھ پہ بیعت جنہوں نے نہیں کی ہے, کیا وہ خوش نہیں ہیں, کیا ان کو ہدایت نہیں ملی, وہ سارے گمراہ ہیں, کیا ان کو مغفرت نہیں ملے گی, اس قسم کے لایعنی سوالات کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں, یعنی بیعت کرنے کا. تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ شیخ کی ضرورت کیوں ہے, کیوں ہم کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جتنے بھی علوم ہیں آپ دیکھیں, دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں, سائنس ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, بائیولوجی ہو, اور اس کے علاوہ دیگر علم حکمت ہو, طب ہو یا اور دیگر علوم ہو, کوئی علم ایسا نہیں کہ آپ کتاب اٹھا کر پڑھ لیں اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں. کسی نہ کسی استاد کی ضرورت لازمی ہے, ضروری ہے, جو آپ کو سمجھائے, آپ کو بتائے. ورنہ علوم پر مختلف کتابیں موجود ہیں, ضرورت نہیں کہ کسی استاد کو دیکھیں. ہر علم پر بے شمار کتابیں ہیں, آپ وہ کتاب اٹھائیں, اس کو پڑھیں اور پریکٹس شروع کر دیں اور آپ سوچیں کہ میں کامیاب ہو گیا, میں اس علم میں ایکسپرٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کتاب اٹھا کر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے نشیب و فراز, اس کی باریکی, اس کا طریقہ وہ نہیں آپ جان سکتے. وہی بتا سکتا ہے جو اس راستے سے گزر چکا ہو, اور جو نہیں گزرا وہ بالکل بے علم ہے, وہ نہیں بتا سکتا. اس لیے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ دنیاوی علوم کے لیے استاد کی ضرورت لازمی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جب دنیاوی علوم کے لیے جو ظاہری علم ہے, ہم وہ علم بغیر استاد کے حاصل نہیں کر سکتے, تو روحانی علم بغیر استاد کے کیسے حاصل کر سکتے, راہ طریقت پر بغیر استاد کے کیسے چل سکتے, جبکہ اس راہ میں شیطان گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے. اور یاد رکھیے, شیطان گمراہوں کو گمراہ نہیں کرتا, وہ تو ہیں ہی گمراہ, جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں جائے گا. شیطان بیٹھے گا ہمیشہ سیدھے راستے پر, اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے لی, اے الہ العالمین میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک, اجازت ہے, لیکن جن کی نیتوں میں خلوص ہوگا ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے, شیطان نے کہا الہ العالمین میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم, ان کے آگے پیچھے, ان کے دائیں بائیں, چاروں طرف سے میں ان پر حملہ کروں گا, اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرا اور نافرمان نہ بنا. اب وہ جب سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے تو وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا, تو اس کے حملوں سے बचाने के लिए पीर की जरूरत, सीधी राह पर चलाने के लिए शेख की जरूरत। वरना इंसान सोचे कि मैं तसव्वुफ की किताबें उठा लूं और मैं उनको पढ़कर, या वज़ाइफ की बेशुमार किताबें मौजूद, पंसूरा मौजूद है, वो तो खैर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ाइफ की जो मजमूए वज़ाइफ है, कितने वज़ाइफ हैं, कोई जलाली है, कोई जमाली है, किसी की तादाद कुछ है, किसी की तादाद कुछ है, हर इंसान वो उठाकर पढ़ना शुरू कर दे तो क्या वो विलायत के किसी मकाम पर पहुंच जाएगा? नहीं। जब तक के बतदरी किसी के सामने जानुए तलम्मुज तय न करे, उस वक्त तक वो इस राह तरीकत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और इस कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है बैत। जिस तरह के हमने आदाब तरीकत के उनवान से जो गुफ्तगू की थी, उसमें आपको ये बताया था कि हर इदारे में जब इंसान दाखिल होता है तो सबसे पहले उसका दाखिला होता है, ठीक है ना। खानकाह में दाखिला जो है वो बैत है। जब आपने बैत कर ली, समझे आपका एडमिशन हो गया, आप दाखिल हो गए, सबसे पहली चीज है बैत। उसके बाद सिलसिला फिर आगे चलता है। और ये बैत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बैत की तीन किस्में हैं, तीन। बैत इस्लाम, बैत जिहाद और तीसरी बैत तरीकत। तीन किस्में हो गई ना, बैत इस्लाम, बैत जिहाद और बैत तरीकत। और ये तीनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने हुजूर पुरनूर अलैहि सलातो वसलाम के दस्ते मुबारक पर बैत की। सबसे पहले तो जब इस्लाम कबूल करते थे, जब बैत करते थे हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के दस्ते मुबारक पर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायउनका, बेशक वो लोग ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके हाथ पर बैत करते हैं, इन्नमा युबायउनल्लाह, बेशक वो अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और अल्लाह का दस्ते कुदरत उन सब के हाथों पर। बज़ाहिर वो हुजूर के हाथ पर दस्ते मुबारक पर बैत कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है कि आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, नहीं, हकीकत में ये तो अल्लाह के हाथ पे बैत कर, इसलिए कि आपके दस्ते मुबारक पर बैत करना ये हकीकत में अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत करना। सरकार के दस्ते मुबारक को अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत फरमाया, ये आपके हाथ पे नहीं, हकीकत में अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और अल्लाह का दस्ते कुदरत इन सब के हाथों पर। तो ये क्या थी, ये तो थी बैत इस्लाम। इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर होते, बैत करते, हम अल्लाह को एक मानते हैं, उसकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते, और आप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल, सच्चा नबी मानते। बैत कर ली, इस्लाम में दाखिल हो। एक बैत तो ये थी, ये तो खैर सभी ने बैत की, जिसने इस्लाम कबूल किया लाजमी है, इसको कहते हैं बैत इस्लाम। दूसरी बैत बैत जिहाद। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते, सहाबा से बैत लेते, उस मौके पर भी सहाबा ने बैत की। कई मौके पर बैत रिजवान है, इसी तरह दीगर मौकों पर जब जंग का मौका आया, काफिरों ने कहीं से हमले करना चाहा या हमले की तैयारी की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि आने करीब वो हमला करने वाले हैं, सरकार ने सारे सहाबा को जमा फरमाया और उनसे बैत जिहाद ली। ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम बैत करते हैं कि हम इस्लाम की हक्कानियत के लिए और आपकी नामूस के लिए हम लड़ेंगे और अपना खून बहाएंगे। सहाबा ने बैत की, इसको कहते हैं बैत जिहाद। और तीसरी बैत क्या है, बैत तरीकत, जो ये आज तक जारी है। ये जो बैत हम करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, बैत तरीकत। ये बैत इस्लाम नहीं है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान मुसलमान है ना सर, कोई और तो नहीं है इसमें, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं। ये अल्लाह तबारक व ताला का करम है कि हम पैदाइशी मुसलमान। अच्छा, दूसरी बात बैत जिहाद, अभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जिहाद की बैत ली जाए। अब तीसरी बैत बैत तरीकत, ये बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन से चली आ रही, और ये भी इसी तरह दस बदस्त। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बैत भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ली, बैत तौबा भी इसे कहा जा सकता है, तौबा करने के लिए हुजूर के दस्ते मुबारक पर बैत की। ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, हम सारे गुनाहों से तौबा कर सच्चे दिल के साथ। हजरत उबादा बिन सामित की बैत का जिक्र है बुखारी शरीफ में, इसी तरह दीगर सहाबा की बैत का जिक्र है बुखारी। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बैत का जिक्र किया 28वें पारे में सूरह मुमतहिना। कुछ औरतें नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई बैत करने के लिए। अच्छा, औरतें कौन सी बैत करने के लिए आईं? इस आयत से पता चलेगा कि कौन सी बैत करने के लिए आईं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजा जाअकल मुमिनात, जब आपके पास मोमिन औरतें आईं, मोमिन औरतें जब आपके पास आईं, इसी लफ्ज ने बता दिया कि वो बैते इस्लाम के लिए नहीं आई थी, वो तो थी मोमिन। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए आती तो फिर ये थोड़ी कहा जाता इजा जाकल मोमिनात, मोमिन औरतें आई, मोमिन तो वही होगी ना जो इस्लाम कबूल कर लिया, और अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो फिर मोमिन कैसे? या अय्युहन नबी इजा जाकल मोमिनात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मोमिन औरतें आई, तो आप क्या करें? आप उनसे बैत लें। किस चीज की बैत? अयुशरिकना बिल्लाही शैअन, कि वो शिरक नहीं करेंगी अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी चीज को किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, इस बात पे आप उनसे बैत लें। वला यसरिकना, और चोरी नहीं करेंगे, वला यजनीना, और जिना नहीं करेंगे, वला यक्तुन्ना औलादहुन्ना, और अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगे, वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरैनहु अईदियहुन्ना, और एक दूसरे पर बहुतान और इफ्तरा नहीं करेंगी। बहुतान लगाती ना औरतें, वैसे तो मर्द भी लगाते, लेकिन औरतों में ये चीज ज्यादा है, एक दूसरे पर बहुतान लगाना, एक दूसरे पर इफ्तराबाजी, इल्जाम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात पर आप इन औरतों से बैत ले लें। तो हुजूर ने किस बात पर बैत ली? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, पहली चीज तो ये साबित हो गई कि वो काफिर औरतें नहीं थी, मोमिन थी। कुरान ने कहा है जाकर मोमिनात, तो जब मोमिन थी। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम ये आयत पेश करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं नहीं ये तो बैत इस्लाम थी, या कहते ये तो बैत जिहाद थी, बैत तरीकत थोड़ी थी, ये तो इन लोगों ने बैत तरीकत खुद ही शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है, इसी आयत ने बता दिया कि वो ना बैत इस्लाम थी ना बैत जिहाद थी, बल्कि बैत तरीकत थी। कैसे? इजा जाकल मोमिनात, जब आपके पास मोमिन औरतें आई, इस लफ्ज ने बता दिया कि वो काफिर नहीं थी, मोमिन थी, और जब मोमिन थी तो बैत इस्लाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर काफिर होती ना तब बैत इस्लाम होती। दूसरी चीज, वो कहते नहीं बैत जिहाद थी, तो हम कहते हैं औरतों पर जिहाद फर्जी नहीं, औरतों पर जिहाद फर्जी नहीं है, तो बैत जिहाद भी नहीं हो सकती। अब तीसरी बैत रह गई बैत तरीकत, साबित हुआ कि यही बैत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली औरतों, साबित हो गया ना बैत तरीकत का, तो ये औरतों से भी साबित हुआ। और अहादीस में बुखारी में हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा की बैत का जिक्र है जो बैत तरीकत है, बैत इस्लाम नहीं है। इस्लाम लाने के बाद फिर उन्होंने बैत की काफी अरसे के बाद, इसको बैत तौबा भी कहते हैं और बैत तरीकत भी कहते हैं। तो साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बैत इस्लाम भी ली, बैत जिहाद भी ली और बैत तरीकत भी ली। तो जैसा कि हमने बताया कि बैत इस्लाम की तो अब जरूरत नहीं और जिहाद भी अभी फर्ज नहीं, तो बैत जिहाद की जरूरत नहीं। अब एक बैत जो बुजुर्गान दीन से चली आ रही है वो है बैत तरीकत। तो बात आपने समझ ली, इस वजह से हम ये बैत करते हैं। तो अब अगर कोई इतराज करे तो आप उसको बता सकते हैं कि ये बैत तरीकत कुरान से साबित है, 28वां पारा सूरह मुमतहिना पढ़कर देख ले, पता चल जाएगा उसको, या उसकी तफसीर देख ले, ठीक है। और बाकी दीगर अहदीस जो हैं, हमने वक्त के इख्तिसार की वजह से उनका तफसील से जिक्र नहीं किया, कभी वक्त होगा तो तफसील के साथ उन अहदीस को भी बयान करेंगे कि सहाबा ने किस तरह ये बैत हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर की। सरे दस्त हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये बैत जो हम करते हैं बुजुर्गान दीन के हाथ पर, ये बैत तरीकत है, इसे बैत तौबा भी कहा जाता है, और बैत की हकीकत भी यही है। इस बात को खास तौर पर याद रखिए कि जब आप किसी के हाथ पर बैत करते हैं तो उसमें नजरिया क्या होना चाहिए, मेरी आकिबत और आखिरत दुरुस्त हो जाए। असल ये नजरिया होना चाहिए, किसी के हाथ पर बैत करें दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। यहां तो मामला ही अलग है, कोई बैत करता है मेरी शादी हो जाए, कोई बैत करता है कि बच्चा हो जाए, कोई बैत करता है कारोबार बढ़ जाए, कोई बैत करता है नौकरी लग जाए, और कहते शायद हम बैत कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा दुआ करें। ऐसी बात नहीं है, जो नहीं करेगा वो दुआ तो उसके लिए भी है, और जो करेगा फर्क यह है कि वो बुजुर्गान दीन के साए में, सबके साए में। जब उसने बैत कर ली तो उसके पीर से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शजरे में जितने बुजुर्गान दीन हैं सब जानते हैं ये हमारा हो गया, इसकी कड़ी से कड़ी मिल गई है, जंजीर से जंजीर मिल गई। तो अब अगर यहां कुछ होगा तो वहां खबर पहुंचेगी, समझ लेना। जब बैत हो जाओ तो फिर संभल के चलना, इधर उधर मत देखना, और कोई ऐसी हरकत नहीं करना। जब जंजीर हिलाओगे तो वहां हिलती है नहीं हिलती, जब दो तार मिलते हैं फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है ना, यही मिसाल है इसकी। तो जब बुजुर्गान दीन के साए में आ गए, उनके दामन से वाबस्ता हो गए, अब सबकी निगाहें करम तुम पर हैं और सब देख रहे हैं, हिफाजत भी कर रहे हैं और तुम्हारी मदद भी कर रहे हैं, ये है इसकी अहमियत और इसकी फजीलत। इस वजह से हम बैत करते हैं। तो बैत करने का मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये रखें कि हमारी आकिबत दुरुस्त हो जाए। अब जो वज़ाइफ पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, अपने कल्ब को साफ करने के लिए, अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए, अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए, इसीलिए होता है ना। और एक बात याद रखिए, आप अपने जहन में आखिरत की दुरुस्तगी का रखेंगे, दुनिया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। दुनिया का ना रखे, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये सारी चीजें, यहां तो ये सिलसिला है ना, किसी ने आकर कुछ कहा हमने कि चलो बुखार हो गया ये तावीज दे दो, वो कहता है कि नजला खांसी हो गई चलो ये तावीज दे दो, यरकान हो गया चलो उसको नीम से झाड़ दो, फना चीज हो गई चलो ये कर दो। एक बात बताओ, कुछ पीर ऐसे भी तो हैं, कुछ मशाइख जो तावीज देते ही नहीं, ऐसे भी है ना जो दम करते ही नहीं, वहां क्या करो, वहां किस लिए बैत करो, ताविज के लिए अगर कर ली और वहां कुछ भी नहीं फिर क्या करो। असल होना यही चाहिए कि दुनियावी गर्ज के लिए नहीं, आखिरत की दुरुस्तगी के लिए बैत की जाए, दुनिया तो खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। तो इसलिए हर शख्स को यह जान लेना चाहिए कि जब वो मुरीद हुआ है, बैत की है, तो दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए। और जब ये नजरिया रखेगा इंशाअल्लाह ताला दुनियावी काम और दुनिया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी, ये तो इसके साथ है ही, ये तो दुरुस्त हो ही जाएगी। ये नजरिया हर एक को, हर तालिब सादिक और हर सालिक को यही नजरिया रखना चाहिए, तब काम चलेगा। तो अब आपने समझ लिया पहली चीज क्या हुई, बैत। तो बैत क्यों जरूरी है कि हर इल्म के हासिल करने के लिए उस्ताद की जरूरत। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में बड़ा प्यारा वाकया बयान किया, पहले भी शायद आप सुन चुके हैं। फरमाते देखो शेख की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है तुम किसी के हाथ पे बैत करो, वजह क्या है। कहते एक बाजार है, उसके अंदर एक बच्चा घूम रहा, मासूम बच्चा ना समझ, उसकी जेब में 100-100 के नोट है, और उसी बाजार में एक चोर भी घूम रहा। अब चोर ने बच्चे को देखा और उसकी जेब पे नजर पड़ी तो नोट, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो नासमझ है, ये तो कमसिन है, बेअकल है, मैं इसको बहला फुसला कर ये नोट चोरी कर। अब बताओ वो चोरी कर सकता है या नहीं, कर सकता है ना, आराम से कोई टॉफी लाके उसे दे दे, बातों में लगा ले, बच्चा टॉफी में लग गया, उसने निकाल लिया, खामोशी से काम हो गया, कर सकता है, और वो कर लेता है। लेकिन उसी बाजार में एक और बच्चा भी घूम रहा, उसकी जेब में 1000-1000 के नोट, चोर ने उसको भी देखा, अच्छा इसकी जेब में 1000 के नोट है, ये भी ना समझ है, ये भी कमसिन है, ये भी बेअकल है, लेकिन वो एक बड़े की उंगली पकड़े हुए जा रहा है। बात समझ रहे हैं? एक बड़े की, किसी समझदार की उंगली पकड़ के जा रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं, अब चोर उस बच्चे को देखेगा कि ये तो ना समझ है, मैं चोरी कर सकता हूं, लेकिन जिसकी उंगली पकड़े हुए वो बड़ा समझदार। समझ गए मिसाल? जिसकी उंगली पकड़े हुए वो बड़ा समझदार है, वो हमला नहीं करेगा। ये बिलाशुबा ना समझ है, कम अकल है, कम सिन है। मैं बैला फुसला के मैं इससे ये नोट ले सकता हूं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा है, इसका निगरा मौजूद है, इसका सरबरा मौजूद है, इसकी निगरानी करने वाला मौजूद है। ये खुद तो ना समझ है, मगर जिसकी उंगली पकड़ के जा रहा है वो बड़ा समझदार। मौलाना रूम फरमाते हैं, इसी तरह ये पूरी दुनिया जो है ये एक बाजार की मानिंद है, और तुम लोग जो हो एक ना समझ बच्चे की मानिंद हो, और शैतान जो है वो चोर की मानिंद है, और ईमान जो है ये दौलत की मानिंद है। जो तुम्हारे दिल के अंदर है, ईमान ये दौलत है, और चोर शैतान है। वो तुम्हें देखता है कि इस भरी दुनिया में ये ईमान की दौलत लेकर घूम रहा है, मैं तो बड़े आराम से ये दौलत छीन सकता हूं, और वो छीन भी लेता है, बैला फुसला कर इधर उधर करके गुनाहों में मुलविस करके दौलत छीन, ईमान निकल गया, बेईमान कर दिया। लेकिन इसी दुनिया में ऐसा भी है कि जो ईमान की दौलत को लेकर घूम रहा है, वो देखता है इसके पास ईमान की दौलत है, ये ना समझ है, मैं छीन सकता हूं, मगर ये गौसे आजम का दामन पकड़े हुए जा रहा, ये गरीब नवाज का दामन पकड़े हुए जा रहा, ये मखदूम समनानी का दामन पकड़े हुए जा रहा, ये सैयद ताहिर अशरफ जिलानी का दामन पकड़े हुए जा रहा, ये सैयद अहमद अशरफ जिलानी का दामन पकड़े, तो ये तो ना समझ है मगर वो बड़े समझदार, ये ना समझ है मगर वो बड़े समझदार हैं। अगर मैंने इस पर हमला किया, वो मुझ पर हमला कर देंगे और मुझे हटा कर रख देंगे। इसीलिए जरूरत है शेख, समझ गए ना बात? इसीलिए जरूरत है, हम अपने ईमान की हिफाजत खुद नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी बड़े को अपने साथ ले लेते हैं कि इस भरी दुनिया में हर तरफ जहां शैतानियत और उर्यानियत, फहाशी, इन हर तमाम चीजों का दौर दौरा है, हर तरफ शैतानियत है, उर्यानियत है, फहाशी है, इस भरे दुनिया में हम कैसे बच सकें? इसीलिए गौस का दामन पकड़ लिया, इसीलिए गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, इसीलिए मखदूम समनानी का पकड़ लिया, कि हम ना समझ हैं, आप हमें इनसे बचा लें। और यकीनन वो बचा भी लेते, यकीनन वो बचाते, वो अपनी निकाह से, और आप इसका तजर्बा भी करके देख लें, और तजर्बा हो भी जाएगा कि कभी ऐसा मसला आए और उस मुश्किल वक्त में आप उनको पुकारें, यकीनन वो पहुंचेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, और ऐसे बचा लेंगे जैसा कि मुर्गी अपने परों में अपने बच्चे को छुपा ले, इस तरह वो मुसीबतों से बचा लेते हैं अपने मुरीदों, परेशानियों से बचा लेते हैं, दीगर हादसात से बचा लेते हैं, और खास तौर पे इस चोर शैतान से बचा लेते हैं। इसलिए कि ये ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आता, और जो नजर ना आए बड़ा खतरनाक होता है। आप देखें ना, अगर कोई दुश्मन सामने से आ रहा हो और आप उसे देख ले, तो आप अपने बचाव की सूरत करेंगे, ये सामने से आ रहा है, हमला कर देगा, मैं कोई चीज उठा लूं, कोई लकड़ी मैं उठा लूं, या कोई चीज उठा लूं, या कोई रिवाल्वर या कोई क्लेशनकोफ मैं अपने पास रख लूं, इसी का दौर है आजकल, लकड़ी का दौर तो है ही, मैं अपने पास रख लूं अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि देख लिया ना आते हुए सामने से। लेकिन ऐसा दुश्मन जो नजर ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि कहां से हमला हो रहा, पता चलता है शैतान कहां से हमला कर रहा है? नहीं पता चलता, तो कैसे बचोगे? जब अपने दुश्मन को तुम देख नहीं सकते तो बचोगे कैसे? ऐसा दुश्मन जो हमला करने के लिए तैयार है, और उसने कह भी दिया है इलाहुल आलमीन, मैं सीधे रास्ते पे चलने वालों के दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से मैं हमला करूंगा, और अल्लाह ने इजाजत दे दी, ठीक है जा हमला कर। लेकिन जिनकी नियतों में खुलूस होगा उस पर, उन पर तेरा दाव नहीं चले। उसने दावा भी कर दिया, उसको इजाजत भी मिल गई, तो अब बताओ ऐसे दुश्मन से कैसे बचें जो नजर ना आए? तो इससे बचने की एक सूरत है, ये दुश्मन हमें देखता है, हम इसे नहीं देखते, नहीं देखते ना, किसी ने देखा शैतान को? देखा है किसी ने? देखा है तो हाथ उठा। अच्छा नहीं देखा, बगैर देखे ये हाल है तो देख के क्या करोगे? दुश्मन को नहीं देखा, वो दुश्मन हमें देखता है, हम उसे नहीं देखते, तो हम कैसे बचें? इससे बचने की सूरत ये है, हम उस जात की पनाह हासिल करें जो जात इसे देखती हो ये उसे ना देखता। सही बात है ना? दुश्मन हमें देखता है, हम नहीं देखते, तो बचने की सूरत है ऐसी जात की पनाह ले कि वो जात इसे देखती हो और ये उसे ना देखता। और वो जात अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मन वालहु की जात। अल्लाह फरमाता है मैं इसे देखता हूं, ये मुझे नहीं देखता, तुम मेरे दामने रहमत में आ जाओ, इसके हमलों से महफूज हो। इसीलिए तो हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान रजीम से। अल्लाह की पनाह मांगते हैं ना शैतान रजीम से, तो जो अल्लाह की पनाह में आ गया वो इसके हमलों से महफूज। और उसके पनाह में आने का तरीका क्या है? पांच वक्त नमाज जो पाबंदी से पढ़ रहा है समझ लो अल्लाह की पनाह में, जो उसके सामने झुक रहा। अच्छा देखो, शैतान ने जब कहा ना कि मैं दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, कितनी जहतें हो गई? चार, दाएं बाएं आगे पीछे, चार हो गई ना। दो जेहते उसने छोड़ दी, ऊपर और नीचे। ये नहीं कहा मौला मैं ऊपर से भी हमला करूंगा, मैं नीचे से भी हमला करूंगा, दो जेहते छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? जब तू चारों तरफ से हमला कर रहा है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, तो ऊपर नीचे से क्यों नहीं कर रहा? इसलिए छोड़ दी कि जब बंदा सजदा करता है तो झुकता है नीचे की तरफ, पेशानी नीचे झुकाता है ना, सजदा करता है तो झुकता है नीचे की तरफ, और जब हाथ उठाता है तो उठाता है ऊपर की तरफ, हाथ उठाता है तो ऊपर की तरफ। इसीलिए उसने छोड़ दी कि गोया अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता था कि जो मेरी बारगाह में झुकते रहेंगे और उसके बाद हाथ उठाते रहेंगे वो इसके हमलों से महफूज रहे। ये हकीकत है, उसके सामने झुकते रहो और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते रहो, महफूज रहो। चारों तरफ से हमला करेगा, महफूज। हजरत इमाम राजी अपने वक्त के जलीलुल कदर इमाम, कोई मामूली नहीं, शैतान उनके पास पहुंच गया और आकर कहता है कि इमाम आप बहुत बड़े इमाम हैं, बड़ी आपने तबलीग की है, बड़े दुख तो हिदायत फैलाई है लोगों को, हिदायत दी, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, उस वक्त जब आप पर जाकनी का वक्त होगा, जाकनी का वक्त होता है जब इंसान की रूह जिस्म से निकल रही होती है, बड़ा सख्त वक्त होता है, और उसकी कैफियत वही जान सकता है जिस पर वो कैफियत तारी हो, बयान नहीं की जा सकती। जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है बड़ा सख्त वक्त होता है, कहा उस वक्त मैं सवाल करूंगा और आपका ईमान ले जाऊंगा, यानी सारी जिंदगी तो हिदायत पहुंचाते रहे, आखिरी वक्त में मैं आपको बेईमान कर दूंगा। पर मैं क्या सवाल, मैं एक सवाल करूंगा, आपने खुदा को किस दलील से पहचाना, अल्लाह को किस दलील से पहचाना? पर मैं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं दलीलें कायम कर दूंगा। आपने दलीलें लिखना शुरू कर दी, इस दलील से पहचाना, इस दलील से पहचाना, इस दलील से पहचाना, हजारों दलीलें कायम कर दी कि जब ये आएगा मुझसे पूछेगा मैं ये दलीलें दे दूं। अब वक्त आ गया चाकनी का वक्त, इमाम राजी अपने वक्त के जलीलुल कदर इमाम और शैतान पहुंच गया, बताइए अल्लाह को किस दलील से पहचाना? आपने दलील दी, उसने अपने इल्म से दलील तोड़ दी, वो भी तो मौलिमुल मलकुत, टीचर ऑफ एंजिल, फरिश्तों का उस्ताद, अरे ये तो इंसानों को पढ़ाते थे वो फरिश्तों को पढ़ाते, और जब फरिश्तों को पढ़ाए उसका इल्म कितना होगा? अच्छा तूने तोड़ दी, दूसरी दलील दी फिर तोड़ दी, तीसरी दलील दी फिर तोड़ दी, इमाम दलीलें दिए जा रहे हैं और वो शैतान तोड़े जा रहा है अपने इल्म से, नहीं ये दलील नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इल्म का मुकाबला इल्म से। उनके पीरो मुर्शिद, और इधर दलीलों का सरमाया खत्म हो रहा, इमाम राजी परेशान, अब क्या होगा, दलीलों का सरमाया खत्म और जाकनी का वक्त, रूह निकल रही है जिस्म से, अब क्या होगा, अंजाम क्या होगा? उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वहां से काफी फासले पर वुजू फरमा रहे हैं, और उस जमाने में वो मट्टी का लोटा होता था ना, उससे पानी डाल वुजू करते थे। वुजू करते करते एकदम ध्यान उस तरफ गया, अरे मेरा मुरीद परेशानी में है, ये शैतान हमला कर रहा है, ऐसा नहीं कि मरते वक्त उसे गुमराह कर दे, ईमान की दौलत छीन ले। उसी वक्त वो लोटा जोर से दीवार पर खींच के मारा, कहा राजी इसके सामने दलीलें क्यों दे रहा है, ये क्यों नहीं कहता मैंने खुदा को बगैर दलील के माना, क्यों दलीलें दे रहा है इसके सामने, ये क्यों नहीं कहता खुदा को बगैर दलील के माना। उनकी आवाज इमाम राजी के कानों तक गई और फौरन कहा मैंने खुदा को बेदलील माना, और ये हाथ मलता रह गया, चला गया, उनकी रूह परवास कर गई, कामयाब हो गई। बचाया नहीं बचाया पीर ने, और ऐसे वक्त बचाया जो बिल्कुल आखिरी वक्त, दुनिया से जाने का वक्त, रूह का जिस्म से निकलने का वक्त, जाकनी का वक्त, ऐसे वक्त में बचाया जब कोई नहीं बचा सकता। और कैसा जवाब दिया, कहा इसके सामने दलीलें देने की जरूरत ही नहीं, इस दलील से पहचाना, इस क्या जरूरत है कहने की, कह दो मैंने खुदा को बेदलील माना, बगैर दलील के मैंने खुदा को माना है, दलीलें मत दो। शैतान ने कहा राजी इस वक्त तेरे पीर ने बचा लिया वरना मैं गुमराह कर दूं, इसलिए जरूरत है पीर की, समझ गए, इसलिए जरूरत है। तो ऐसे वक्त में शेख मदद करता है और अपनी रूहानी कुव्वत से, रूहानी तसर्रुफात से अपने उस मुरीद को तमाम हादसात से और खुसूसन शैतान के हमलों से बचा लेता है। लेकिन यहां एक बात और काबिले गौर है, और वो करनी इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट में सिर्फ असली घी होता था तो कोई छान पटक की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो ना, जरूरत नहीं थी, जाओ असली घी ले आओ। लेकिन जब डालडा आ गया, जब और दीगर किस्म के आ गए, अब जरूरत पड़ेगी ना देखने के असली कौन है नकली कौन है ना, मार्केट में हजारों चीजें नकली, प्रोडक्शन निकल रही है, कॉपी बन बन के निकल रही है। इसी तरह जिस तरह हर शोबे में असली और नकली मौजूद हैं, इस शोबे में भी मौजूद है, तरीकत के शोबे में भी मौजूद हैं। जो रहबर के भेष में रहजन है, रहबर नहीं है, रहजन और रहबर में फर्क करो। रहबर कौन है जो तुम्हारी रहबरी करता है, रहनुमाई करता है, और रहजन कौन है जो तुम्हें लूट कर ले जाता है। इसीलिए बता रहा हूं कि आज के दौर में यह मौजूद है। अब आपने सुन लिया पीर की जरूरत है, पीर की अहमियत है, पीर बचाता है, पीर ये करता है वो करता है, सारी चीजें सुन ली, और जाकर किसी रहबर नुमा रहजन के हाथ पे बैठ कर ली तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, समझ गए, इसलिए बता रहा हूं। इसलिए जिसके हाथ पर बैत करो पहले उसकी महफिल में बैठकर उसे देख लो, पहले उसका सिलसिला नसब देख लो, पहले उसका सिलसिला तरीकत देख लो, और ये देख लो कि इसके हाथ में अगले वाले का हाथ है या नहीं, इसके हाथ में गौसे आजम का दामन है या नहीं। खुद भी गुमराह होगा, तुम्हें भी गुमराह कर देगा, खुद भी गुमराह होगा और पीछे चलने वाले भी गुमराह हो जाएंगे। आज के दौर में ये चीज बहुत है, किसी ने आस्ताना बनाया और बैठ गए, बैकग्राउंड का पता नहीं क्या है, लोग आने शुरू हो गए, बैत करने शुरू हो गए, हाथ चूमने शुरू हो गए, मुरीद होने शुरू हो गए, सारी चीजें हो गई, बाद में पता चला कि रहबर के भेष में रहजन, इसलिए छान फटक करके देख कर के असली है या नकली तब बैत करो, और जब बैत हो जाओ तो फिर हमेशा के लिए रासिखुल अकीदा रहो, तब काम बनेगा। इसकी मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि ये चीज आजकल बहुत चल रही है, और कितने अफसोस की बात है, आप लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इस चीज से महफूज हैं, दीगर हजरात जो यहां पर बचपन से आते हुए ابا حضور قبلہ کو دیکھا ان کی صحبت میں بیٹھے اور اس کے بعد دوسری طرف چلے گئے. کسی کی چمک دمک دیکھی ادھر چلے گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں, کہتے نہیں یہیں پر آؤ, ہم پہلے ہی پریشان ہیں, ویسے ہی رشے بہت. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ جاؤ, جاؤ لیکن صحیح جگہ جاؤ. اور ایک بات یاد رکھو, ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی, ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی, انگارا بھی چمکتا ہے, قریب جاؤ گے چھوو گے جنا دے گا. مثال میں بات کر رہا ہوں, آپ سمجھدار ہیں. ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی, انگارا بھی چمکتا ہے, دور سے نظر آ رہا ہے, قریب گئے چھوا, ہاتھ لگایا جلا دیا, ارے اس نے تو مجھے جلا دیا. تو اگر جلے ہوئے آؤ گے تو پھر ہم نہیں سنبھالیں گے, بہت سے جلے ہوئے کو سنبھال رہے ہیں جو جل جل کے آ رہے ہیں, کچھ ویسے ہی ہیں جو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں. خیر بہرحال, تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان بیت ہو تو وہ دیکھ کر کہ اس کا تعلق پیچھے سے بزرگان دین سے ہے یا نہیں. اور ایک اور کسوٹی ہے پیر کو پرکھنے کی. دادا حضور قبلہ نے فرمایا, قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کوئی ہوا پر اڑتا ہو, کوئی پانی پر چلتا ہو, اگر شریعت اور سنت کے خلاف ہیں تو سمجھ لو شیطان ہو. شعبے بازی ہے. کسی کو دیکھا کہ ہاں وہ تو ہوا پہ اڑ رہے تھے, ارے وہ تو پانی پہ چل رہے تھے, وہ تو یہ کام کر رہے تھے, وہ تو یہ کام کر رہے تھے. بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے, جو انہوں نے کیا اگر یہ وہ کر رہا ہے تو صحیح ہے, اور ان کے عمل کے خلاف کر رہا ہے تو سمجھو شیطان ہے. پھر یہ شعبے باز ہے, پھر یہ گمراہ کر رہا ہے, یہ اپنی طرف راغب کر رہا ہے. بزرگان دین کی تو شان ہی الگ ہے, ان کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. ان کی شان تو یہ ہے کہ جنگل میں جا کر بیٹھ گئے, دنیا وہیں قدموں میں پہنچ گئی. داتا گنج بخش لاہور میں پہنچے تو کیا تھا, غریب نواز اجمیر میں پہنچے تو کیا تھا, مخدوم سمنانی کچوچے میں پہنچے تو کیا تھا, مجدد الف ثانی سرہند شریف میں پہنچے تو کیا تھا, سب جنگل تھا, ویرانہ تھا, اللہ کے ولی نے قدم رکھ دیا, مخلوق خدا خود وہاں پہنچ گئے. کوئی اشتہار نہیں دیا کہ ہم یہاں بیٹھے, آؤ ہمارے پاس آ جاؤ, جیسا کہ اخبارات میں اشتہار آتے ہیں. کوئی اشتہار نہیں دیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اندر روحانیت ہے, اور روحانیت میں خوشبو ہوتی ہے, روحانیت میں کشش ہوتی ہے. جس شخص کے اندر روحانیت ہوگی وہ جہاں بیٹھے گا مخلوق خدا وہیں پہنچ جائے, اور جن میں روحانیت نہیں ہوتی وہی اشتہار دیتے ہیں, وہی چار جاؤ ہم سے آ کے تعویذ لے لو, آؤ ہم سے دعا کرا لو. اس لیے کہ خالی ڈبا کچھ نہیں, اور جن کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں جہاں ہم بیٹھیں گے خود بخود مخلوق خدا پہنچے. یہ ایک نشانی ہے اصلی اور نقلی کی. سمجھ گئے بات؟ تو آپ نے آج کی اس نشست میں یہ سمجھ لیا کہ بیت کی تین قسمیں, کتنی؟ تین قسمیں, بیت اسلام, بیت جہاد اور بیت طریقت. بیت اسلام کی ضرورت نہیں, الحمدللہ سب مسلمان ہیں, بیت جہاد کی بھی ضرورت نہیں, ابھی آپ پہ جہاد فرض نہیں ہوا. اور بیت طریقت کی ضرورت اس لیے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے, اور دنیا میں جو شیطان پھر رہے ہیں, جو اس بڑے شیطان کے پیروکار ہیں, ان سے بچنے کے لیے پھر شیخ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا اور سیدھے راستے پر چلائے گا. اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ بیعت کے لیے صرف اور صرف نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میری عاقبت اور آخرت درست ہو جائے, دنیاوی کوئی کام اس ذمن میں نہ لائیں. اور جب اس نیت سے آپ بیعت کریں گے تو دنیا خود بخود درست ہو جائے گی. نظریہ صرف آخرت پر, نظریہ صرف عاقبت پر, یہی بیعت کی اصل ہے اور یہی بیعت کی اہمیت ہے. تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. الحمدللہ ہم اصحاب طریقت ہیں, بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں. تو آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ضرورت شیخ کیوں ہے, ہم کیوں بیعت کرتے ہیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے, اگر کوئی سوال کرے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. اپنے متمع نظر پر، اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیے، کوئی کتنا ہی بہکاتا رہے اس کی باتوں میں نہیں آئیے۔ یہ شیطانی حرکتیں ہیں، شیطانی فتنے ہیں، یہ اعتراضات ہیں جو اعتراض کر کے آپ کے عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی نظر، ان کی مدد، ان کے روحانی تصرفات شامل حال رہیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و دخل اسے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے، ان کے تصرفات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے دور فرما۔ اے الہ العالمین، حاضرین مجلس کی جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔